From the Conference Center at Temple Square,
सॉल्ट लेक सिटी के टेंपल स्क्वायर स्थित सम्मेलन केंद्र से यह अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजे का 186वां वार्षिक महासम्मेलन है का रविवार दोपहर का सत्र है। इसके वक्ता गिरजे के जनरल अधिकारियों और पदाधिकारियों में से चुने गए हैं। इस सत्र का संगीत मॉर्मन मंडल गायक मंडली द्वारा होगा। ये प्रसारण बॉनिवल डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा सार्वजनिक सेवा के रूप में किया जा रहा है। बिना लिखित अनुमति के इस कार्यक्रम की नकल, रिकॉर्डिंग, प्रतिलेखन या अन्य उपयोग वर्जित है। प्रथम अध्यक्षता में द्वितीय सलाहकार अध्यक्ष डीटर एफ ओकडोर्फ इस सत्र का संचालन करेंगे।
Our dear brothers and sisters, we welcome you.
भाइयों और बहनों और मित्रों, अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजे के अर्ध वार्षिक 186वें सम्मेलन के समापन सत्र में हम आपका स्वागत करते हैं। अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन, जो इस सम्मेलन के संचालन करता है, ने मुझे इस अधिवेशन को संचालन करने को कहा। हम विश्व भर में गिरजे के सदस्यों और मित्रों को शुभकामनाएं देते हैं और स्वागत करते हैं जो इन कार्यवाही में रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट या उपग्रह प्रसारण द्वारा भाग ले रहे हैं। इस अधिवेशन के लिए संगीत मॉर्मन टबरनाकल गायन मंडली मैक विलबर्गन और रायन मर्फी के निर्देशन द्वारा ऑर्गन पर लिंड्रा मार्गेटसन के साथ दिया जाएगा। गायन मंडली इस अधिवेशन का आरंभ प्रेज द लॉर्ड द ऑलमाइटी गाकर करेंगी। प्रारंभिक प्रार्थना उसके पश्चात एल्डर सी स्कॉट ग्रे द्वारा दी जाएगी।
Our Father in heaven, with humble hearts and
हमारे स्वर्ग के पिता, अपने हम्बल हार्ट के साथ हम आपके पास आते हैं, इस अंतिम अधिवेशन में आपके पास आते हैं और आपका धन्यवाद देते हैं और रेस्टोरेशन के लिए धन्यवाद देते हैं और यीशु मसीह के चर्च का अंतिम दिनों के संतों का चर्च के लिए धन्यवाद देते हैं। हम आपकी कुंजियों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और पुनः स्थापना की हुई सुसमाचार का धन्यवाद करते हैं और सारे ऑर्डिनेंसेस और सारी धर्म विधियों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं और विशेषकर मंदिरों के लिए धन्यवाद देते हैं और आनंद मनाते हैं नए मंदिरों के लिए जो इसकी घोषणा की गई है और प्रॉफिट के लिए धन्यवाद जो हमें गाइड करते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं और हमें इनका समर्थन करने में और हमारी सहायता करने में हमारी सहायता कीजिए। प्रेजेंट थॉमस एस मॉन्सन के लिए उनकी लाइफ और उनकी सेवकाई के लिए और उनकी अटोनिंग सेक्रीफाइस के लिए आ फादर हमारे पिता इस सेशन के लिए हम आपकी आत्मा को मांगते हैं जिससे कि हम जो काइंडमेंटली गाएंगे और जो वार्ता देते हैं सबों जो सारे संसार में बांटते हैं पिता कि उससे विश्वास बढ़े और यीशु मसीह में बढ़े और आपकी इच्छा के अनुसार आगे बढ़े और आपके अनुसार काम करें और आपके नाम से मांगते हैं, आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन।
The choir will now favor us with
अब For I am called by thy name से हमारा अभिनंदन करेंगे। गीत के पश्चात हम एल्डर रॉबर्ट डी हेल्स 12 की परिषद से सुनेंगे। उनके पश्चात एल्डर गैरेट डब्ल्यू 70 की अध्यक्षता के एल्डर पैट्रिक कैरन 70 से हमारा संबोधन करेंगे।
My beloved brothers and sisters,
मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आज सुबह प्रभु का सेवक और एक परदादा होकर बोल रहा हूं। आपको अपनी प्रिय पीढ़ी को मैं पवित्र आत्मा के भेंट की विशेषता के बीच में सिखाता हूं और उनको गवाही देता हूं। मैं आरंभ करता हूँ मसीह की ज्योति को स्वीकार करते हुए जो हर पुरुष और स्त्री को दी जाती है जो संसार में आते हैं। इस पृथ्वी जो पवित्र ज्योति से हम सबको लाभ होता है, यह सब में है और हर माध्यम में उपस्थित है और हम वो हम में और सब में और वह हमें सही और गलत के चुनाव को करने का चुनाव करते हैं। परंतु पवित्र आत्मा यीशु मसीह की ज्योति से अलग है। यह परमेश्वरता का तीसरा सदस्य है, एक भिन्न पात्र जिसके साथ पवित्र जिम्मेवारियां हैं और स्वर्ग के पिता और पुरुष पुत्र उद्देश्य में एक है। गिरजेघर के सदस्य होने के कारण हम पवित्र आत्मा की संगति को निरंतर अनुभव कर सकते हैं। परमेश्वर के पौरात्य के पूर्ण निर्माण से हमें पानी में डुबाकर बपतिस्मा दिया जाता है हमारे पापों के लिए और फिर हम गिरजा का स्थायी सदस्य बन जाते हैं। इस धर्मविधि में हम हाथों के अधिवेशन से पवित्र आत्मा को भेंट दी जाती है और तत्पश्चात हमको आत्मा की संगीत में स्वीकार किया जाता है और स्वीकार उद्धारकर्ता और आज्ञाओं का पालन करने के साथ उचित ढंग से प्रभु भोज ले सकते हैं। और सबत के दिन हमारे जीवन के मुख्य निर्णय लेने के लिए जैसे शिक्षा, मिशन, आजीविका, विवाह, बच्चे, परिवार सहित रहने वाले स्थानों के लिए पवित्र आत्मा हमें निजी प्रकटीकरण प्रदान करती है। इन मामलों में स्वर्गीय पिता हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि हम अपने चुनाव का प्रयोग कर परिस्थिति को अपनी बुद्धि से, सुसमाचार के विचारों से उनके पास एक निर्णय और प्रार्थना लाएं। निजी प्रकटीकरण आवश्यक है परंतु यह पवित्र आत्मा को कार्य करने का केवल एक भाग है। जिस तरह पवित्र धर्मशास्त्र उद्धारकर्ता की गवाही प्रमाणित करते हैं वैसे पवित्र आत्मा भी करती है। वह हमें राज्य की शांतिप्रिय चीजों के विषय में सिखाती है। वह हमें आशा में भरपूर होना संभव करती है। वह हमें अच्छाई और ईमानदारी से न्याय करने का नेतृत्व करती है। वह प्रत्येक स्त्री और पुरुष को आत्मिक भेंट देती है जिससे सबका लाभ हो। वह हमें ज्ञान देती है और हर चीज स्मरण में लाती है। वह पवित्र आत्मा के हम पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र हो सकते हैं और अपने पापों की क्षमा को प्राप्त कर सकते हैं। वह दिलासा देने वाला है, वैसे ही वादा उद्धारकर्ता ने अपने चेलों से किया था। मैं सबको याद दिलाना चाहता हूं, क्या मैं आपको सबको याद दिलाऊं कि पवित्र आत्मा हमें नियंत्रण में रखने के लिए नहीं दिया गई है। हम में से कुछ अपने जीवन को बुद्धि से पवित्र आत्मा का हर छोटे छोटे कारणों में निश्चय खोजते हैं। वह उनकी धार्मिक भूमिका को महत्वहीन बना देती है। पवित्र आत्मा का चुनाव के सिद्धांत का आदर करता है। वह हमारी बुद्धि और मन को कोमलता से महत्वपूर्ण विषयों के बारे में बताता है। हम में से हर एक को पवित्र आत्मा का प्रभाव अलग अलग तरह से महसूस होता है। उसकी फुसफुसाहटें भी अलग अलग तरह से स्तर पर हमारी निजी अवस्थाओं और अवस्था के अनुसार महसूस होती है। इन अंतिम दिनों में हम आश्वासन देते हैं कि केवल भविष्यवक्ता को पवित्र आत्मा के द्वारा सारे गिरजे के लिए प्रकटीकरण मिल सकता है। कुछ भूल जाते हैं कि जैसे एरन और मरियम ने बूसा को विश्वास दिलाकर उसे अपने साथ राजी किया था, परंतु उन्हें प्रभु ने सिखाया और हमें भी सिखाया, यदि तुम में से कोई भविष्यवक्ता हो मैं प्रभु उसे दर्शन द्वारा खुद को प्रकट करूंगा, मैं उसके सामने प्रत्यक्ष होकर बातें करूंगा। कभी कभी हमारा विरोधी शत्रु हमें गलत ख्याल से बहकाता है जिससे हम पवित्र आत्मा से उलझ लेते हैं। मैं गवाही देता हूं कि ईमानदारी से आज्ञाओं का पालन और अनुबंधों को रखने से हमें विश्वासघात से सुरक्षा मिलेगी। हम पवित्र आत्मा के द्वारा उन गलत भविष्यवक्ताओं को पहचान सकते हैं जो मनुष्यों की आज्ञा का सिद्धांत के रूप में सिखाते हैं। जब हम अपने लिए पवित्र आत्मा मिलती है तो ये बुद्धिमानी है कि हम उसे हमेशा याद रखें कि हम किसी और के लिए प्रकटीकरण प्राप्त नहीं कर सकते। मैं एक नवयुवक को जानता हूं जिसने एक युवती से कहा, मुझे एक सपना आया था कि तुम मेरी पत्नी हो। तुमने सोच लिया। युवती ने सोचा, उसके बातों पर सोचा और कहा, जब मुझे भी यही सपना आएगा तब मैं आपसे आकर बात करूंगी। हम सब प्रलोभित हो सकते हैं अपनी निजी इच्छाओं पर पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से विजय प्राप्त कर। भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ ने मॉर्मन की पुस्तक के 116 पेज मार्टिन हारिस को सौंपने के लिए स्वर्गीय पिता से निवेदन किया। जोसेफ को लगा ये अच्छी सोच है, परंतु पवित्र आत्मा ने उन्हें प्रमाणित करने की भावना नहीं दी थी। अंत में जोसेफ ने वो पेज मार्टिन हैरिस को दे दिए और मार्टिन हैरिस ने उन्हें खो दिया और कुछ समय के लिए परमेश्वर ने भविष्यवक्ता जोसेफ से अनुवाद करने का उपहार वापस ले लिया। जोसेफ ने एक दर्दनाक मगर महत्वपूर्ण सबक सीखा जिसके द्वारा उनकी पूरी सेवा को रचा गया। पवित्र आत्मा केंद्र है पुनः स्थापना का। भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ ने अपने बचपन से संबंधित पढ़ाई लिखाई में जेम्स 1:5 का वर्णन किया है। वह इस प्रकार, कभी भी किसी धर्मशास्त्र का कोई अंश इतनी शक्ति से मनुष्य के हृदय तक नहीं पहुंचा होगा जितना कि वह उस वक्त मेरे हृदय तक पहुंचा था। जिसकी शक्ति को जोसेफ ने वर्णन किया वह पवित्र आत्मा का प्रभाव था। फलस्वरूप जोसेफ अपने घर के निकट उपवन में गया और परमेश्वर से घुटने के बल होकर प्रार्थना किया और प्रथम दिव्य दर्शन जो उसको मिला प्रभावशाली था। परंतु वह मार्ग जो स्वयं पिता और पुत्र के अनुग्रह का हुआ वह पवित्र आत्मा की प्रार्थना की फुसफुसाहट से आरंभ हुआ था। सुसमाचार के प्रकाशित सच और पुनः निर्माण प्रार्थना में खोजने के स्वरूप द्वारा आए हैं। उसके पश्चात पवित्र आत्मा को पाकर उनकी फुसफुसाहट का अनुसरण करके गौर करें उन उदाहरण को मॉर्मन की पुस्तक पौरोहित्य और धर्म विधियों का पूर्ण निर्माण बपतिस्मा से शुरू होकर गिरजे की स्थापना तक कुछ नाम हैं। मैं आज गवाही देता हूं प्रथम अध्यक्षता और 12 को प्रभु से प्रकटीकरण इसी स्वरूप में प्राप्त होता है। ये सब वही है जो व्यक्तिगत प्रकटीकरण के लिए हमें मिलते हैं। हम सब उनको श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा का अनुसरण किया है। इस पुनः स्थापित सुसमाचार को पाने में जोसेफ स्मिथ ने अपने परिवार से शुरू होते हुए, जब जोसेफ स्मिथ ने अपने पिता मोरनी की भेंट के विषय में बताया तब स्वयं उनके पिता को उनकी पुष्टि की गवाही प्राप्त हुई। तुरंत ही जोसेफ को खेती की जिम्मेवारियों से रिहा कर दिया गया और स्वर्गदूत ने निर्देश का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। हम भी वैसा ही करें। हम सब माता पिता भावविक होने के कारण ऐसा कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को और अन्य लोगों को पवित्र आत्मा का मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित करें। ऐसा करने से हम पवित्र आत्मा का उदाहरण स्वयं अनुसरण करेंगे। कोमलता, करुणा, सहनशीलता और सच्चे प्रेम का मार्गदर्शन करती है परिवारों और पूरे गिरजेघर में। इस समझ के साथ कि क्या मैं पवित्र आत्मा का निजी अपने जीवन और गिरजा के कुछ उदाहरण का योगदान कर सकता हूं, मैं आपको निजी रूप से गवाह भेंट करता हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा हम सबको आशीर्वाद देता है। कई वर्ष पूर्व बहन हिल्स और मैंने योजना बनाई कि हम अपने सहकर्मियों के लिए एक खास रात्रि भोज का आयोजन कर अपने घर में बुलाएंगे। कार्यालय से अपने घर आते हुए मुझे प्रभाव हुआ कि मैं एक विधवा के घर ठहरूं जिन्होंने मुझे पढ़ाया था। मैंने इस बहन के दरवाजे को खटखटाया और मैंने उससे कहा, मैं आपके लिए आने के लिए प्रार्थना कर रहा था। यह प्रभाव कहां से आया? पवित्र आत्मा। एक बार एक गंभीर बीमारी होने के पश्चात मैं स्टेक सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। अपनी शक्ति को बचाने के लिए मैंने पौरित्य नेतृत्व सत्र को तुरंत बाद गिरजे का प्रस्थान की योजना बनाई, परंतु समाप्ति प्रार्थना के बाद जैसे ही सब कमरे को छोड़कर निकल रहे थे, मैं सबसे हाथ मिलाने के लिए प्रेरित हुआ। एक एल्डर, युवा एल्डर मेरे पास आया और प्रेरित हुआ कि वह उस एक संदेश देने के लिए स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा को सुनो, उन अनुबंधों का अनुकरण करो और तुम्हारा जीवन में सब अच्छा हो जाएगा। उसके पश्चात स्टेक अध्यक्ष ने मुझे बताया कैसे यह युवा पुरुष अपने मिशन से जल्द लौट आया। एक स्पष्ट प्रभाव के आधार पर स्टेक अध्यक्ष ने युवा पुरुष से पिता से किया था, यदि आप अपने पुत्र को पवित्र सभा में लेकर जाएंगे तो एल्डर हेल्स उससे बात करेंगे। मैं क्यों प्रत्येक से हाथ मिलाने के लिए रुका? मेरे लिए सुझाव का साधन कौन था? पवित्र आत्मा। मैं क्यों रुका इस विशेष युवा के लिए, ताकि वह मेरी सलाह को ले सके? पवित्र आत्मा थी। 2005 के आरंभ में मुझे मार्गदर्शन मिला कि महासम्मेलन में संदेश प्रचारक दंपतियों के बारे में बोलने के लिए। जब सम्मेलन के पश्चात एक भाई ने वर्णन किया, जैसे ही हम सम्मेलन सुन रहे थे, तुरंत ही प्रभु की आत्मा ने मेरी आत्मा को छुआ। कोई गलती नहीं थी संदेश में। मैं अपनी मिशन की सेवा में था, अब समय था। जब मैंने अपनी पत्नी की ओर देखा, मुझे ज्ञात हुआ उन्हें भी आत्मा से वही प्रभाव प्राप्त हुआ था। यह सशक्त समकालिक उत्तर कहां से आए थे? पवित्र आत्मा। मैं अपने वंश को और सबको जो मेरी आवाज के अंतर्गत है अपनी गवाही देता हूं, जो कि निजी प्रतिकरण और हर दिन के निरंतर मिलने वाले निर्देश, चेतावनी, प्रोत्साहन और शांति की है।
स्ट्रेंथ
जो हमारे परिवार में पवित्र आत्मा के द्वारा आती है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रभु की कोमल दया को अनेकताओं में चमत्कारों का अनुभव करते हैं। मैं अपनी विशेष गवाही देता हूं कि उद्धारकर्ता जीवित है। मैं स्वर्गीय पिता का को अपना प्रेम और आभार पवित्र आत्मा की भेंट के लिए व्यक्त करता हूं, जिससे वे अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं और हमारे जीवन में समर्थन करते हैं। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
Dear brothers and sisters, when I served in Asia, people sometimes.
प्रिय भाइयों बहनों, जब मैं एशिया में सेवा कर रहा था, लोग कभी-कभी पूछते थे, एल्डर गॉव, इस गिरजे में, इस क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं? मैं कहता था, दुनिया की आधी जनसंख्या, अरब 3.6 अरब लोग। कोई पूछता था, क्या सबों का नाम याद रखना कठिन है? याद रखना अभूल जाना प्रतिदिन की जीवन का हिस्सा है। उदाहरण के लिए एक बार अपने नए मोबाइल फोन को हर तरफ खोजने के बाद मेरी पत्नी ने आखिर में उसके नंबर को दूसरे फोन से मिलाने का निश्चय किया। जब उसने अपने फोन की घंटी सुनी मेरी पत्नी ने सोचा मुझे कौन फोन कर सकता है, मैंने तो ये नंबर किसी को नहीं दिया। रिमेम्बर एंड फॉरगेट, याद रखना और भूल जाना भी हमारा अनंत यात्रा का हिस्सा है। समय स्वतंत्र और याद रखने का विकास करने और विश्वास में आगे बढ़ने में मदद करता है। जानने पहचाने स्तुति गीत के शब्दों में हम यीशु के नाम का जयकार करेंगे और प्रशंसा अदा करेंगे। तुम संत संघ के साथी होंगे। प्रत्येक हफ्ते प्रभु भोज भाग लेते समय हमेशा उसे याद रखने का हम अनुबंध करते हैं। शब्द याद रखने 400 से अधिक शमशाद संदर्भों में कुछ का वर्णन करते हुए 6 तरीके हैं जिसमें हम उन्हें याद रखते हैं। पहला, उसके अनुबंध प्रतिज्ञाओं और आश्वासनों में भरोसा रखने के द्वारा हम उससे हमेशा याद रख सकते हैं। प्रभु अपने अनंत अनुबंधों को याद रखता है। आदम के समय से लेकर आदम के वंश तक सच का आलिंगन करके और ऊपर देख के तब सियोन नीचे देखेगा और सारे स्वर्ग खुशी से कांपेगा और पृथ्वी आनंद से हिल उठेगी। मॉर्मन की पुस्तक यीशु के नाम के अन्य नियम और प्रत्येक सदस्य और प्रचारक को दी गई प्रतिज्ञाओं के माध्यम से प्रभु बिखरे हुए इसराइल को एकत्र करने की प्रतिज्ञा सहित अपनी प्रतिज्ञाओं को याद रखता है जो आत्माओं के मूल्य को याद रखता है। प्रभु याद रखता है और राष्ट्रों और लोगों को आश्वासन देता है। आजकल के प्रतिशोधशील और व्याकुलता के समय किसी को रथों में भरोसा किसी को घोड़ में, परंतु हम प्रभु हमारे परमेश्वर का नाम याद रखेंगे। वे भविष्य में राह दिखाएगा जैसे उसने अतीत में दिया है। कठिन समस्या में राह रखेंगे परमेश्वर का कार्य नहीं जिसे रोका जा सकता है अपितु मनुष्य का कार्य है। दूसरा, पूरे जीवन भर उसके हाथ में कृतज्ञता पूर्ण स्वीकार करते हुए हम हमेशा उसे याद रख सकते हैं। प्रभु हमारे जीवन में प्रभु का हाथ अक्सर पीछे की ओर देखने में स्पष्ट होता है। जैसे ईसाई दार्शनिक सोरेन का ये कहना है, जीवन को केवल पीछे की ओर देखते ही समझ जा सकता है, लेकिन इसे अवश्य ही आगे की ओर जाना चाहिए। मेरी प्रिय माँ ने हाल ही में अपना 90वां जन्मदिन मनाया। उन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक मोड़ पर परमेश्वर की आशीषों का आभार प्रकट किया। परिवार इतिहास, परिवार की परंपरा, परिवार के बंधन हमें बीती हुई यादों को बातों की याद का मजा लेने में मदद करते हैं, जबकि भविष्य के आदर्शों और आशाओं का उपलब्ध कराते हैं। प्रोहित्य अधिकार का क्रम और कुलपति की आशीषें सभी पीढ़ियों में परमेश्वर के हाथ को गवाही देते हैं। क्या आपने अपने आप को अपनी स्वयं की याद की जीवन पुस्तिका के रूप में सोचा है? विचार करते हुए क्या आप कैसे करना सुन सकते हैं? उदाहरण के लिए, जब मैं युवक था मैं स्कूल में बास्केटबॉल खेलना चाहता था। मैंने बहुत अभ्यास किया। एक दिन कोच ने हमारे 6 फुट और 4 इंच और 6 फुट और 2 इंच स्टार फॉरवर्ड को दिखाया और मुझसे कहा, मैं तुम्हें टीम में रख सकता हूँ लेकिन तुम खेल नहीं पाओगे। मुझे याद है कितना प्यार से उसने उत्साहित किया था। मैं सॉकर के लिए प्रयास क्यों नहीं करता, तुमने उससे रहोगे। मेरा परिवार खुश हुआ और मेरा पहला गोल किया। हमें याद रखते हैं जो हमने मौका देते हैं। ईमानदारी, धैर्य, उत्साह से एक दूसरे को मौका, और हम अपने ऐसा कर कोई बन सकते हैं जो दूसरे याद रख सके जब उन्होंने सबसे अधिक मदद की जरूरत करते हैं। कृतज्ञ से दूसरों की मदद को याद रखते हैं और आत्मा को। तीसरा, हम उसका भरोसा करते हुए हमेशा उसे याद रख सकते हैं। जब प्रभु हमें आश्वासन देता है, वे जो अपने पापों का पश्चाताप करता है उन्हें क्षमा कर दिया जाता है। प्रभु मैं प्रभु उन्हें बिल्कुल याद नहीं रखता। जब हम अपने पापों को स्वीकार और त्याग करते हुए पूर्ण रूप से पश्चाताप करते हैं, हम इनोस के साथ पूछते हैं, जब हम हमारे अपराध भूल जाते हैं, प्रभु हमें ये कैसा हुआ, और ये उत्तर सुनते हैं, मसीह तुम्हारा विश्वास और उसका निमंत्रण मुझे याद रखता है। एक बार जब हम पश्चाताप करते और पुरोहित मार्गदर्शक हमें योग्य घोषित करते हैं, हम बार बार अपने पीछे पापों को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। योग्य होने का अर्थ परिपूर्ण होना नहीं है, आनंद की उसकी योजना। हम शांति से हमारे जीवन की यात्रा में विनम्र होकर एक दिन मसीह में परिपूर्ण होने का निमंत्रण देती है। आज की अपूर्णता का लगातार चिंता, असंत असंतुष्टता या दुखी ना होते हुए याद रखें, हम उन सब बातों को जानते हैं जो हम नहीं चाहते कोई अन्य सा हमारे बारे में जाने, और फिर भी हम वो प्रेम करते हैं। कभी कभी जीवन मसीह की दया, न्याय और फैसले उसके स्वतंत्रता के निमंत्रण में हमारे भरोसे की प्रतीक्षा लेता है, ताकि हमारे प्रायश्चित हमें चंगा करते हैं जब हम दूसरों की और स्वयं के अपने क्षमा करते हैं। अन्य देशों में एक युवती ने पत्रकार की नौकरी के लिए आवेदन दिया, लेकिन वह अधिकारी जो नौकरी देता था क्यूट था। उसने कहा, मेरे हस्ताक्षर से मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम पत्रकार नहीं बनोगे बल्कि नाला खोदोगी। और नाला खोदने वाला पुरुष के दल में वे एक मात्र महिला थी। सालों बाद वे महिला अधिकारी बन गई। एक दिन एक पुरुष नौकरी के लिए उसके हस्ताक्षर लेने आया। उसने पूछा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? वह उसे नहीं पहचानता। वह बोली, तुम मुझे नहीं पहचानते लेकिन मैं तुम्हें पहचानती हूँ। अपने हस्ताक्षर से तुमने गारंटी दी थी कि मैं कभी पत्रकार नहीं बनूंगी। अपने हस्ताक्षर से तुमने मुझे नाला खोदने भेजा था। पुरुषों के दल में एकमात्र महिला। वे मुझसे बोली, मैं महसूस करती हूँ मुझे उस पुरुष को अच्छा व्यवहार करना चाहिए था, लेकिन मेरे पास उतना शक्ति नहीं थी। कभी कभी ये शक्ति हमारे भीतर नहीं होती, लेकिन हमें हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के प्रायश्चित को याद करके पाया जा सकता है। जब भरोसा और धोखा दिया जाता है, सपने बिखर जाते हैं, हृदय बार बार तोड़े जाते हैं। जब हम न्याय चाहते हैं, दया की जरूरत होती है। जब हमारी मुट्ठियां कसी जाती हैं और हमारे आंसू बहने लगते हैं। जब हम जानना चाहते हैं कि कैसे थामे और किससे तोड़े, हम हमेशा उसे याद कर सकते हैं। जीवन उतना क्रूर नहीं जितना ये कभी कभी दिखता है। उसकी असीम करुणा हमें अपना मार्ग, सच्चाई और जीवन खोजने में करती है। जब हम अपने वचनों और उदाहरण को याद करते हैं, हम अपमान ना करेंगे ना सहेंगे। मेरे मित्र की पत्नी मैकेनिक का काम करते थे। उसका ईमानदार परिश्रम उसके सफाई से धुले हाथों में भी नजर आता था। एक दिन मंदिर में किसी ने मेरे मित्र के पिता से कहा, ये सेवा करने से पहले अपने हाथों को धोना चाहिए। बुरा मानने के स्थान पर इसे भले व्यक्ति ने मंदिर जाने से पहले परिवार के बर्तनों को हाथ से धोए, लेकिन साबुन से धोना शुरू कर दिया। उसने उसका उदाहरण दिया, स्वच्छता हाथों और परिसात्मा हृदयों के साथ प्रभु में पर्वत पर चढ़े और उसने पवित्र स्थान को खड़ा हुआ। यदि हमारे पास निर्दयी अनुभूति, शिकायत और या बदलने की भावना है या नहीं, यदि हम दूसरों से क्षमा मांगनी है तो ऐसा करने का समय अभी है। चौथा, वह हमें याद करने के लिए निमंत्रण देता है कि वह घर में हमेशा हमारा स्वागत करता है। हमें पूछने और खोजने के द्वारा सीखते हैं, लेकिन कृपया तब तक खोज करना समाप्त ना करें जब तक आप खोज ना लें। एलिस ओट ने कहा था, जहां से आप आरंभ करते हैं और पहली बार उस स्थान को जाने, जब आप तैयार हो अपना मॉर्मन की पुस्तक के लिए अपने हृदय खोलें, फिर पहली बार कृपया सच्ची इच्छा के साथ प्रार्थना करें, फिर पहली बार उस पहली या धुंधली याद पर भरोसा करें। इसे अपना विश्वास बड़ा करना दें। परमेश्वर के साथ पीछे ना लौटने के लिए कोई जगह नहीं है। प्राचीन और आधुनिक पक्षवक्ता हमें मानव दोषी अपराधों या कमजोरियों को एक दूसरे की या हमारी अपनी सच्चाइयों, अनुबंध और उससे पुनर्स्थापित समाज में मुक्ति दिलाने वाली शक्ति को खोने के कारण नहीं बनने देते। यह विशेषकर उस गिरजे में महत्वपूर्ण है जहां हम सब अपनी अपूर्ण भागीदार से हैं। प्रॉफिट जोसेफ स्मिथ ने कहा था, मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि मैं परिपूर्ण हूं, लेकिन उन्होंने प्रतिकरणों से मुझे पुष्टि नहीं की है जो मैंने सिखाया है। उनकी निरनाश्वर सेवकाई के अंत में पूर्ण जीवित सेवकाओं के आरंभ में उन्होंने उद्धारकर्ता ने रोटी और मदिरा ली और कहा, उसने शरीर और लहू को याद रखा, क्योंकि जब तुम इसे करते हो तुम इस समय को याद करोगे कि मैं तुम्हारे साथ था। प्रभु भोज की इस विधि में हम पिता परमेश्वर की गवाही देते हैं कि हम उसके पुत्र का नाम अपने ऊपर धारण करके हमेशा उसे याद रखने और उसकी आज्ञाओं का पालन करने की इच्छा करते हैं जो उसने हमें दी है, ताकि उसकी आत्मा हमारे साथ हमेशा बनी रहे। जैसे अमुलक सिखाता है, उसे याद रखते हैं। जब हम अपने खेतों, हमारे बाड़ों और हमारे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम जरूरतमंद, नंगे, रोगी और पीड़ितों को याद करते हैं, अंत में छठा, हमारा उद्धारकर्ता हमें हमेशा उन्हें याद करने का निमंत्रण देता है जैसे हमें हमेशा याद रखता है। नए संसार में हमारा पूर्ण जीवन उद्धारकर्ता उन्हें निमंत्रण देता है जो आने को तैयार है, एक बार करके अपने हाथों से उसकी छाती में डालने और उसके हाथों में और उसके पैरों में कीलों की निशानों को महसूस करने के लिए। धर्मशास्त्र पुनस्थान की व्याख्या ऐसा करता है, प्रत्येक अंग और जोड़ पुनर्स्थापित किया जाएगा उसके उचित और परिपूर्ण अवस्था में और सिर का एक बाल भी कम नहीं होगा। ऐसा है तो कृपया विचारें कैसे हमारे उद्धारकर्ता का परिपूर्ण पूर्ण जीव शरीर पर अभी उसकी छाती में घाव और उसके हाथों और पैरों में कील के निशान है। कई बार इस इतिहास में नाश्वर मनुष्यों का क्रूस द्वारा मारा गया है, लेकिन केवल हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह उसके शुद्ध प्रेम के चिन्हों के लिए हमें गले लगाता है। केवल वह क्रूस पर उठाए जाने की भविष्यवाणी को पूरा करता है ताकि हमसे प्रत्येक को नाम के द्वारा उसके निकट ला सकें। हमारा उद्धारकर्ता घोषणा करता है, हाँ मैं भूल सकते हैं, हम ये भूल सकते हैं कि फिर मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। देखो मैंने तुम्हारा चित्र अपनी हथेलियों पर खोदकर बनाए हैं। वे प्रमाणित करता है मैं वह हूँ जो उठाया गया था, मैं यीशु हूँ जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। मैं विनम्रता के साथ गवाही देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि हम हमेशा उसे याद रखेंगे हर समय, हर बातों में और हर स्थानों में जहाँ भी हम हों, यीशु मसीह के नाम में, आमेन।
For I was an hungered, and you gave me meat.
क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं अपरिचित था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नग्न था तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इनमें छोटे से छोटों में किसी के साथ नहीं किया वह मेरे साथ भी नहीं किया। एक अनुमान के अनुसार आज संसार भर में 60 मिलियन शरणार्थी हैं, जिसका मतलब है कि हर 122 मनुष्यों में अपने घर को छोड़ने के लिए भागने के लिए मजबूर हुए हैं और इनमें से आधे बच्चे हैं। गौर करें, इनमें चौंका देने वाली संख्या शामिल है और हर एक व्यक्ति के जीवन में क्या यह क्या अर्थ रखता है। मेरा अभी का कार्यभार यूरोप में है जहां 1.25 मिलियन शरणार्थी हैं, जो पिछले वर्ष मध्य पूर्वी देश और अफ्रीका के युद्ध से ध्वस्त क्षेत्र से आए हैं। हम देखते हैं कि बहुत से केवल कपड़े पहन कर आते हैं और एक छोटे से थैले में जो कुछ ला सकते हैं लेकर आते हैं। पहली अध्यक्षता के निर्देशानुसार गिरजाघर 75 संस्थाओं के साथ 17 यूरोपियन देशों में काम कर रहा है। ये संस्थाएं बड़ी विदेशी संस्थाओं से लेकर छोटे सामाजिक अवसर, सरकारी संस्था से विश्वास आधारित और संसारिक धर्मदान कर्म में है। हम भाग्यशाली हैं दूसरों के साथ सहयोगी होने के जो शरणार्थियों के साथ संसार भर में काम कर रही है। गिरजाघर के सदस्य के रूप में, मनुष्य होने के रूप में, हम पीछे मुड़कर इतिहास में उस समय को देखना है जब हम शरणार्थी थे, अन्यायपूर्ण घर से और खेतों के बार बार निकाले गए। पिछले सप्ताहांत बहन लिंडा बर्टन ने गिरजे स्त्रियों को गौर करने के लिए कहा, क्या होता यदि उनकी कहानी आपकी होती। उनकी कहानी हमारी कहानी है, कुछ अधिक वर्ष पूर्व नहीं। सरकारी और संस्थाओं के परे काफी प्रभारित ऊंची बहस जारी है कि शरणार्थी की परिभाषा क्या होनी चाहिए और उनकी मदद करने के लिए क्या करना चाहिए। यह सोचकर किसी भी तरह एक गर्म बहस के भाग नहीं लिए हैं, परंतु उन लोगों पर ध्यान देने के लिए हैं जिन्हें उनके घरों और देशों से युद्ध से निकाला गया है, जिनमें उनका कोई हाथ नहीं था। उद्धारकर्ता जानते हैं कैसा महसूस होता है एक शरणार्थी होना, वे भी एक थे। छोटे ब्लॉक बालक के रूप में यीशु और उनके परिवार को इजिप्ट से हेरोद की मार डालने वाली तलवार से बचकर भागना पड़ा था और अपनी ही सेवकाई के विभिन्न स्तरों पर उन्होंने अपने आप को धमकियों और अपने जीवन को खतरे में पाया। आखिरकार बुरे मनुष्य के उद्देश्य में अपने आप को प्रस्तुत करके जिन्होंने उनकी मृत्यु को रचा। शायद तभी हमारे विशिष्ट हो जाता है कि हम सबको एक दूसरे से प्यार करना सिखाएं। एक प्रेम जो उन्होंने किया, अपने पड़ोसी से प्रेम करें जैसे अपनों से करोगे। सच में सच्चा धर्म और निर्मल परमेश्वर और पिता के सामने यह है, बिना पिता के और विधवाओं से उनके दुखों में भेंट करें और गरीब और मददगारों की ओर देखें और उनको राहत दें ताकि वह और न भुगतें। यह देखना प्रेरणादायक रहा है कि संसार भर के गिरजा के सदस्यों ने इन व्यक्तियों और परिवारों जिन्होंने बहुत कुछ खोया है की उदारता से दान देकर मदद की है। यूरोप में विशेष रूप में मैंने गिरजा के सदस्यों को देखा है जिन्हें एक आनंदपूर्ण जागृति और आत्मा की समृद्धि का अनुभव हुआ है, जैसे कि उन्होंने पहुँचने और सेवा अपनी गहरी इच्छा उनके लिए की है जिनको अपने चारों ओर अत्यधिक आवश्यकता है। गिरजा ने उन्हें शरण स्थल और चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई है। स्टेक्स और मिशन्स ने कई हजारों स्वास्थ्य किट्स जोड़े हैं। दूसरे स्टेक्स ने खाना और पानी, कपड़े, बरसाती किताबें, पीठ थैला, पढ़ने के चश्मे और बहुत कुछ उपलब्ध कराया है। स्कॉटलैंड से सिसिली तक के व्यक्तियों ने कदम रखे हैं हर सोचने योग्य भूमिका में। डॉक्टर्स और नर्स ने अपनी सेवा स्वैच्छिक हर स्थान पर की है जहां शरणार्थी भीगे, ठंडे और अधिकतर आहत आते हैं पानी को पार करके। जैसे कि शरणार्थी अपना पुनर्वास को आरंभ करते हैं, लोकल सदस्य उनकी मदद समुदाय देश की भाषा को सीखने में मदद करते हैं, वैसे ही दूसरे बच्चों और माता पिता की आत्माओं का उत्थान उन्हें खिलौने, कला की चीजें, संगीत और खेल प्रदान करके कराते हैं। कुछ दिया हुआ ऊन लेकर, बुनने वाली सुइयां और क्रोशिए के हुक से लोकल शरणार्थी बूढ़े और जवानों को यह हुनर सिखा रहे हैं। गिरजा के अनुभवी सदस्य जिन्होंने वर्षों सेवा और अध्यक्षता को दिए हैं, इस सच को प्रमाणित करते हैं कि ऐसे लोगों की अध्यक्षता ने तुरंत ही धनी सबसे संतुष्ट अनुभव इस सेवा में आज तक प्राप्त किया है। बचाव उनका जो सबसे बेहतर नीचे गहराई में है। इन स्थितियों की सच्चाई का विश्वास करने के लिए इन्हें देखना चाहिए। सदियों में मैं बहुतों में सीरिया की एक गर्भवती औरत से मिला जो एक शरणार्थी कैंप में बेकरार होकर यह आश्वासन चाह रही थी कि उसका बच्चा उस हॉल के ठंडे फर्श पर ना हो जहां वह रह रही थी। सीरिया में वह एक यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी और ग्रीस में मैंने एक भीगे, कपकपाते और डरे हुए परिवार से बात करी जो टर्की से एक छोटी नाव से पार करके आए थे। उनकी आंखों में देखने के बाद और उनकी कहानियां सुनकर दोनों ही डर से भागने की और उनकी शरण पाने के लिए संकटमय यात्राओं की मैं पहले जैसा कभी नहीं रहूंगा। विस्तार से सेवा और सहायक एक निष्ठा विस्तृत समर्पित कार्यकर्ता का होना है। इनमें बहुत से स्वयं सेवक हैं। मैंने गिरजे के एक सदस्य को कार्य करते देखा जो कई महीनों से रात भर काम करके तुरंत मदद प्रदान करती जो टर्की से ग्रीस आते। बहुत से अनगिनत कामों में वे महत्वपूर्ण चिकित्सा प्रदान करती उनको जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती। उन्होंने देखा औरतें और बच्चे जो अकेले थे उनकी देखभाल होती। वह उनको पकड़ के रखती जो वंचित हुए थे मार्ग में और उन सबको अच्छे से निर्धारित करती। अपने सीमित साधनों से असीम मदद की। उनके जैसे जो बहुत से आक्षरिक सेवकाएं स्वर्गदूत रहे हैं जिनके कार्यों को भुलाया नहीं जा सकता। उनसे जिनकी उन्होंने देखभाल की ना प्रभु से जिनके लक्ष्य पर वे थीं, वह सब जिन्होंने अपने चारों ओर पीड़ा को देखकर अपने आप को राहत में दिया है, वे एल्मा के लोगों की तरह है। और हाँ, अपने पूर्ण परिस्थितियों में उन्होंने किसी को नग्न नहीं भेजा, ना उनको जो भूखे थे या जो प्यासे थे या जो बीमार थे या जिनका पोषण नहीं हुआ था। वे सबके साथ भले थे। दोनों युवा और बूढ़े, दोनों बंधे और आजाद, दोनों पुरुष और स्त्री, चाहे गिरजे में या गिरजे के बाहर, मनुष्य के आदर को नहीं, केवल जिनको आवश्यकता थी। हमें ध्यान रखना है कि शरणार्थियों की स्थिति किसी तरह एक साधारण समाचार न बन जाए। जब वह शुरुआती धक्का उतरता है और तब भी युद्ध जारी रहता है और परिवार आते रहते हैं, संसार भर में लाखों शरणार्थी जिनकी कहानी कोई समाचार नहीं बनाती अब भी मदद के लिए बेकरार है। यदि आप पूछ रहे हैं मैं क्या कर सकता हूँ, पहले हमें याद रखना है कि हम अपने परिवार के खर्चे और दूसरी जिम्मेदारियां पर सेवा नहीं कर सकते, न ही हमें अपने अध्यक्ष से हमारे लिए प्रोजेक्ट स्थापित करने की आशा रखनी चाहिए, परंतु अकेले या परिवारों के साथ हम बड़े मानवतावादी कोशिश में जुड़ सकते हैं। प्रथम अध्यक्षता के संसार भर के शरणार्थी मसीह जैसी सेवा में भाग लेने के आमंत्र के उत्तर में सहायता संस्था युवती और प्राथमिक जनरल अध्यक्षताओं ने एक सहायक प्रयास की स्थापना की है जिसका शीर्षक आई वॉज अ स्ट्रेंजर है। बहन बर्टन ने इसका परिचय गिरजा की स्त्रियों को पिछले सप्ताह जनरल स्त्रियों की सभा में दिया। बहुत से मदद करने वाली योजनाएं हैं, साधन और सुझाव iwasstranger.lds.org पर
हैं।
अपने घर के पास कुछ करने के लिए सोचें, अपने समुदाय में जहां आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें नई परिस्थितियों को अपनाने में मदद चाहिए। किसी भी सेवा का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य एक उद्योगी पुनरुद्धार और आत्मनिर्भर जीवन की ओर जिनकी आवश्यकता होती है। हमारे हाथ देने की संभावनाएं अनंत हैं। आप फिर से बसते शरणार्थी की मदद समुदाय देश की भाषा सीखने में कर सकते हैं, उनकी कार्यशैली को अवगत करा सकते हैं या नौकरी के इंटरव्यू का अभ्यास करा सकते हैं। आप किसी परिवार या अकेली माँ का उपदेशक बनकर उन्हें अनजान संस्कृति के परिवर्तन में मदद कर सकते हैं। कुछ वार्ड्स और स्टेक्स में प्रचलित विश्वसनीय संस्थाएं हैं जिनके साथ आप एक सहयोगी बन सकते हैं और आपकी परिस्थिति के अनुसार आप अतिरिक्त मानवतावादी प्रयास गिरजाघर को दे सकते हैं। इसके साथ में हम में से हर एक संसार के आयोजन के प्रति जागरूकता को बढ़ा सकता है जो इन परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। हमें असहिष्णुता और आदर के समर्थन में उन पर की संस्कृतियों और परंपरा को समझने के लिए खड़ा होना चाहिए। शरणार्थी परिवारों से मिलना और उनकी कहानियों को अपने कानों से सुनना और किसी स्क्रीन या पेपर से नहीं, बहुत सी दया, दोस्ती और सफल एकाकीकरण में सहायता कर सकता है। प्रभु ने हमें निर्देश दिए हैं कि जायन के स्टेक्स हमारे एक रक्षा और तूफान से एक शरणार्थी हैं। हमें शरण मिल गई है, चलिए हम बाहर आते हैं अपनी सुरक्षित जगहों से और बांटते हैं अपनी प्रचुरता से, आशा करते हैं एक उज्जवल भविष्य की, परमेश्वर और अपने सहपाठियों पर विश्वास करते हैं और प्रेम जो सांस्कृतिक और विचारधारा की भिन्नताओं के परे है एक यशस्वी सच को देखता है कि हम स्वर्गीय पिता के बच्चे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। शरणार्थी होना एक निर्णायक क्षण शरणार्थियों के जीवन में हो सकता है, परंतु शरणार्थी होना उनकी परिभाषा नहीं देता। जैसे कि हजारों उनके सामने, यह समय होगा जब हम आशा करते हैं अल्प अवधि उनके जीवन में। उनमें से कुछ नोबल पुरस्कार, लोक सेवक, चिकित्सक, वैज्ञानिक, संगीतकार, कलाकार, धार्मिक अध्यक्ष और दूसरे विषयों में योगदानकर्ता बनने की ओर जाएंगे। वास्तव में बहुत से उनमें यह थे इससे पहले कि उन्होंने सब कुछ खो दिया। यह क्षण उनकी परिभाषा नहीं देता, परंतु हमारा जवाब उनकी परिभाषा देने में मदद करता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन भाइयों में से किसी के साथ किया वह मेरे ही साथ किया। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
Thank you, Brethren. On a signal from the conductor,
परिचालक के निर्देशक पे कलीसिया
खड़े होकर गायक मंडली के साथ मिलकर गाएंगी गाय अस ओ दाव ग्रेट जहुआ। संगीत के बाद हम एल्डर एलिन एच ओक्स 12 की परिषद के प्रेरितों से सुनेंगे।
The choir will then sing, "The day dawn is breaking."
This is the 186th annual.
ये अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजे का 186th वार्षिक महासम्मेलन है।
Central to the gospel of Jesus Christ is
यीशु मसीह के सुसमाचार का केंद्र उसके बच्चों की अनंत प्रगति के लिए पिता की उद्धार की योजना है। आधुनिक प्रतिकरण में समझाई गई यह योजना हमें बहुत सी बातों को समझाने में मदद करती है जिनमें हम नश्वरता का सामना करते हैं। मेरा संदेश इस योजना के विरोध में आवश्यक भूमिका पर केंद्रित है। पिता के बच्चों के लिए नश्वर जीवन का उद्देश्य उन अनुभवों का उपलब्ध कराना था जो परिपूर्णता की ओर आगे बढ़ने के लिए जरूरी हैं और अनंत जीवन के वारिस के रूप में उनकी दिव्य नियति को समझना है। इस परीक्षा के द्वारा प्रगति के परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने का चुनाव करेंगे।
To be tested, we must have the agency.
परीक्षा लेने के लिए हमारे परीक्षा का पालन करने का चुनाव करेंगे। हमारी परीक्षा के लिए हमारे पास कम से कम दो में से एक को चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। चुनने की स्वतंत्रता के लिए विरोध का होना बहुत जरूरी है जिससे हम अपने चुनने की स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं। शेष योजना भी जरूरी है। जब हम गलत चुनाव करते हैं जैसा निश्चित रूप से हम करते हैं हम पाप द्वारा अशुद्ध हो जाते हैं। और हमारी अनंत नियति की ओर आगे बढ़ने के कार्य के लिए हमें शुद्ध किया जाना जरूरी है। पिता की योजना ऐसा करने का मार्ग उपलब्ध कराती है, न्याय की अनंत मांग को पूरा करने का मार्ग। उद्धारकर्ता हमारे पापों से मुक्त करने के लिए मूल्य चुकाता है। वह उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है, अनंत पिता परमेश्वर का इकलौता पुत्र, जिसका प्रायश्चित बलिदान, जिसके कष्ट हमारे पापों का मूल्य चुकाते हैं यदि हम उन गलतियों का पश्चाताप करेंगे। योजना की योजनाबद्ध भूमिका के उत्पन्न उदाहरण में से एक मॉर्मन की पुस्तक लेही की उसके पुत्र याकूब को दी गई शिक्षाओं में पाई जाती है। यह आवश्यक है कि सब कामों में विरोध हो। यदि ऐसा ना होता तो धार्मिकता नहीं लाई जा सकती थी, ना दुष्टता, ना पवित्रता, ना दुख, ना ही अच्छाई और ना ही बुराई ना होती। इसके परिणाम स्वरूप लेही आगे कहता है, परमेश्वर प्रभु ने मनुष्य को यहोवा का कार्य करने के लिए छूट दी है, इसलिए मनुष्य स्वयं के लिए कार्य नहीं कर सकता था यदि वह एक अन्य या दूसरे के द्वारा फुसलाया नहीं जाता। इसी प्रकार आधुनिक प्रकटीकरण में प्रभु घोषणा करते हैं, यह जरूरी है कि शैतान मानव संतान को लालच दे, वरना वे स्वयं के लिए कार्य नहीं कर सकते। अदन की वाटिका में विरोध आवश्यक था। यदि आदम और हवा उस चुनाव को नहीं करते जिसके कारण नश्वरता आई, लेही सिखाता है, वे निर्दोष अवस्था में ही रहते, कुछ अच्छा नहीं करते क्योंकि उनके पाप का पता नहीं था। आरंभ से ही चुनने की स्वतंत्रता और उसका विरोध पिता की योजना और शैतान की उसके विरुद्ध विरोध का केंद्र रहा है। जैसा प्रभु ने मूसा को प्रकट किया था, स्वर्ग की परिषद में शैतान ने मनुष्य की चुनने की स्वतंत्रता का विनाश करना चाहता। यह विनाश शैतान के सुझाव की शर्तों के साथ स्वाभाविक था। वह पिता के सम्मुख आया और कहा, देखो मुझे भेजो, मैं आपका पुत्र बनूंगा और मैं संपूर्ण मानव जाति को मुक्ति दूंगा, ऐसा कि एक भी आत्मा नहीं खोएगी, और अवश्य ही मैं इसे करूंगा, इसलिए मुझे अपना सिंहासन सौंप देना। इस प्रकार शैतान पिता की योजना को पूरा करने का प्रस्ताव रखा, जिससे पिता का उद्देश्य पूरा नहीं होता था और शैतान को पिता को अपना सिंहासन देना पड़ता था। शैतान के प्रस्ताव ने परिपूर्ण समानता को अनुसूचित किया था। यह संपूर्ण मानव जाति को मुक्ति दिलास देता, एक भी आत्मा नहीं खोती, किसी के पास सुनने की कोई स्वतंत्रता नहीं होती और इसके लिए कोई विरोध की जरूरत भी नहीं होती, कोई परीक्षा नहीं होती, कोई असफलता नहीं होती, कोई सफलता नहीं होती, इस उद्देश्य को पाने के लिए कोई प्रगति नहीं होती जो अपने पिता अपने बच्चों के लिए चाहता है। धर्मशास्त्र लिखते हैं कि शैतान की विरोध का कारण स्वर्ग में युद्ध हुआ, जिसमें पिता के एक तिहाई बच्चों ने पिता की योजना की योजना को चुनने का और शैतान के विद्रोह को अस्वीकार करते हुए नश्वर जीवन का अनुभव का अधिकार प्राप्त किया था। शैतान का उद्देश्य स्वयं के लिए पिता का सिंहासन और शक्ति पाना था। इसीलिए पिता ने कहा था, क्योंकि शैतान ने मेरा विरोध किया, इसके कारण मैंने उसे नीचे धकेल दिया उन आत्माओं के साथ जिन्होंने अपने चुनने की स्वतंत्रता का उपयोग उसका अनुसरण करने के लिए किया है। बिना शरीर की आत्माओं के रूप में नीचे स्वतंत्रता में धकेल दिया। शैतान और उसके अनुयायी पिता के बच्चों को लालच और धोखा और वश में करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार यह शैतान है जो पिता की योजना का विरोध करता है और नष्ट करना चाहता है। असल में वह इसे आगे बढ़ाता है, क्योंकि विरोध के कारण ही चुनाव किए जाते हैं और यही है चुनाव करने का मौका देते हैं जो प्रगति की ओर आगे बढ़ाता है, और यही पिता की योजना का उद्देश्य है।
महत्वपूर्ण रूप से पाप करने का लालच नश्वरता में केवल एक ही प्रकार का विरोध नहीं है। पिता लेही सिखाता है, यदि पतन ना हुआ होता तो आदम और हवा निर्दोष अवस्था में ही बने रहते, कोई आनंद ना होता क्योंकि वो कोई दुख ना जानते थे। नश्वरता के बिना विरोध के अनुभव के वह सब बातें एक में ही मिश्रित होनी चाहिए, जिसमें कोई खुशी या दुख नहीं होता। इसलिए पिता लेही आगे कहता है, सब कुछ की रचना करने के पश्चात मनुष्य के अंत में उसके अनंत उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विरोध की जरूरत थी, यहाँ तक कि वर्जित फल का विरोध में जीवन का वृक्ष था, एक मीठा और दूसरा कड़वा। उद्धार की योजना के इस भाग का उसकी शिक्षा उनके साथ समाप्त होती है, लेकिन देखो हर बात उसके ज्ञान के अनुसार की गई है जो सब बातों को जानता है। आदम का पतन हुआ ताकि मनुष्य हो, और मनुष्य हैं ताकि वे उन्हें आनंद प्राप्त हो। कठिन परिस्थितियों में विरोध करना, जिनका सामना हम नश्वरता में करते हैं, योजना का एक भाग है जो नश्वरता में हमारी प्रगति की ओर आगे की ओर ले जाता है। हम सब उन विरोधों का अनुभव करते हैं जो हमारी परीक्षा लेते हैं। इनमें से कुछ परीक्षाएं पाप करने का लालच होती हैं, कुछ व्यक्तिगत पाप से भिन्न नश्वर चुनौतियां होती हैं, कुछ बड़ी होती है, कुछ छोटी होती है, कुछ लगातार चलती है, कुछ थोड़े समय के लिए होती है। इनमें कोई नहीं बचता। विरोध हमें वैसा बनने की ओर आगे बढ़ने का मौका देता है जैसा हमारा स्वर्गीय पिता हमें बनाना चाहता है। मार्मन की पुस्तक अनुवाद करने के बाद जोसेफ स्मिथ को एक प्रकाशक की खोज थी। यह आसान नहीं था, इस भारी भरकम वस्त्रलिपि की जटिलता और छपाई की और हजारों पत्तियों को बनाने का खर्च बहुत भयभीत करने वाला था। जोसेफ पहले ई.बी. ग्रेडिन के पास गए, जो कि पाल्मीरा का प्रिंटर था, जिसने मना कर दिया। फिर वह दूसरे पलिवारा एक प्रिंटर के पास गए, जिसने भी मना कर दिया। उन्होंने 40 किलोमीटर दूर रॉचेस्टर की यात्रा की और पश्चिमी न्यूयॉर्क के नामी प्रकाशक से बात की, उसने भी मना कर दिया। अन्य रॉचेस्टर प्रकाशक तैयार हो गया, परंतु परिस्थितियों के कारण इसे स्वीकार नहीं किया जा सके। हफ्ते गुजर गए और जोसेफ अवश्य ही अपने दिव्य आदेश को पूरा करने से विरोध से घबरा गया। प्रभु ने इसे सरल नहीं बनाया था, लेकिन उसने अवश्य ही इसे संभव बनाया था। जोसेफ का पांचवा प्रयास पाल्मीरा प्रकाशक ग्रीन के पास दूसरी बार जाना सफल हुआ। सालों बाद जोसेफ को लिबर्टी जेल में कई महीनों के लिए कष्टपूर्ण कारावास में डाला गया। जब उसने राहत के लिए प्रार्थना की, प्रभु ने उससे कहा, ये सब बातें तुम्हें अनुभव देंगी और तुम्हारी भलाई के लिए ही होंगी। हम सब अन्य प्रकार के नश्वर विरोध को जानते हैं जो हमारे व्यक्तिगत पापों के कारण नहीं होते हैं, जैसे बीमारी, अयोग्यता और मृत्यु। थॉमस एस मॉन्सन ने हमें समझाया, आप में से कुछ कभी कभी अपने कष्टों में चिल्ला उठते हैं, आश्चर्य करते हुए क्यों परमेश्वर स्वर्गीय पिता उन परीक्षाओं से गुजरने की अनुमति देता है जिनका आप सामना करते हैं। हालांकि हमारा नश्वर जीवन सरल होने या निरंतर सुख देने के लिए नहीं था। हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि कठिन चुनौतियां, हृदय तोड़ने वाले दुख और मुश्किल चुनाव द्वारा हम सीखते और उनसे आगे बढ़ते हैं, और हमारे प्रत्येक उन अंधकार में दिनों का अनुभव करता है जब कोई प्रिय गुजर जाता है। कष्टपूर्ण समय हमारे स्वास्थ्य ठीक नहीं होते हैं, अकेले होने की अनुभूतियां होती हैं जब जिससे हम प्रेम करते हैं लगता है हमें छोड़ दिया है। ये और अन्य परीक्षाएं हमारे सहने की योग्यता की वास्तविक परीक्षा होती है। शपथ के दिन का पालन करने के लिए हमारे प्रयासों का सुधार विरोध के कम तनावपूर्ण उदाहरण को प्रस्तुत करता है। हमारे पास शपथ के दिन का आदर करने की आज्ञा है। हमारे पास कुछ चुनाव इस आज्ञा का उल्लंघन कर सकते हैं, लेकिन अन्य विकल्पों में शपथ के दिन समय कैसे व्यतीत करना महज एक प्रश्न है। क्या हम केवल उसे करेंगे जो अच्छा है या बेहतर है या सर्वोत्तम है? लालच का विरोध को दर्शाने के लिए मॉर्मन की पुस्तक तीन उपायों की व्याख्या करती है जो शैतान अंतिम दिनों में उपयोग करेगा। पहला, वह मानव संतान हृदय में द्वेष उत्पन्न करेगा और उन्हें भलाई के विरुद्ध उत्तेजित करेगा। दूसरा, वह शांत करेगा और सदस्यों को सांसारिक सुरक्षा का धोखा देगा कहते हुए कि सियोन संपन्न है, सब कुछ ठीक है। तीसरा, वह हमसे कहेगा कोई नरक नहीं है और मैं शैतान नहीं हूँ क्योंकि कोई शैतान नहीं है, इसलिए कोई सही और गलत नहीं है। इस विरोध के कारण हमें चेतावनी दी जाती है, सियोन में आराम से ना रहे। गिरजा इसके दिव्य मिशन में और हम अपने व्यक्तिगत जीवनों में लगता है आज अत्यधिक विरोध का सामना कर रहा है। शायद जब गिरजा संख्या में आगे बढ़ता है और हमारे सदस्य विश्वास और आज्ञाकारिता में प्रगति करते हैं, शैतान अपने विरोध की शक्ति बढ़ाता है ताकि वह निरंतर सब बातों में हमें इस विरोध का सामना करना पड़ सके। इस विरोध में कुछ गिरजे के सदस्यों की ओर से भी होते हैं, कुछ हैं जो भविष्यवक्ता के निर्देश का प्रतिरोध करने के लिए व्यक्तिगत विचार या समझ का उपयोग करते हुए स्वयं को चुनी हुई संस्थाओं से मांग कर लिया गया वफादार विरोध का नाम देते हैं। यह लोकतंत्र के लिए कितना भी उचित क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर के राज्य के शासन में इस अवधारणा की कोई मान्यता नहीं है। जहां प्रश्नों का तो आदर होता है लेकिन विरोध का नहीं। एक अन्य उदाहरण के तौर पर हमारे आरंभिक गिरजे के इतिहास में बहुत सी बातें हैं जिसे किसी एक परिस्थिति में जोसेफ ने क्या क्या करते थे या क्या नहीं करते। कुछ लोग इसका विरोध करने का आधार बनाकर उपयोग करते हैं। उन सभी से मैं कहता हूं, उदारकर्ता की शिक्षाओं में विश्वास करें और भरोसा रखें, उनके फलों से हम उन्हें पहचानेंगे। जो रिकॉर्ड हमारे पास है गिरजा उनमें पारदर्शिता रखने का हर संभव प्रयास करता है, लेकिन जो हम प्रकाशित कर सकते हैं उसके पश्चात हमारे सदस्य के पास कभी कभी आधारभूत प्रश्न हो सकते हैं जिनका जवाब अध्ययनों के द्वारा नहीं दिया जा सकता। यह सभी बातों में विरोध करने के गिरजे के इतिहास का प्रारूप रहा है। कुछ बातें केवल विश्वास द्वारा सीखी जा सकती हैं। हमारा असली भरोसा उस गवाही में विश्वास में होना चाहिए जो हम पवित्र आत्मा से प्राप्त करते हैं। परमेश्वर उसके किसी भी बच्चे की स्वतंत्रता में कुछ लोगों के राहत के लिए शायद ही कभी बाधा डालता है, लेकिन वह अवश्य ही हमारे कष्टों के बोझ को हल्का करता और उनको सहने की ताकत हमें देता है, जैसा उसने आलमा के लोगों को हिलम प्रदेश में दिया था। वह प्राकृतिक आपदाओं को नहीं रोकता लेकिन उनके प्रभाव को कम कर या उन्हें दूसरी ओर मुड़कर या अवश्य ही हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है, जैसा उसने शक्तिशाली तूफान के समय किया था जिसने फिजी मंदिर समर्पण में बाधा डालने का खतरा पैदा किया था। वह सभी विरोधों के माध्यम से हमारे जो बम अभी ब्रसल्स एयरपोर्ट में गिरा है उनको भी नहीं रोक सकता, लेकिन हमारे कुछ मिशनरी हमारे सभी निराश्वर विरोधों के माध्यम से हमारे पास परमेश्वर का आश्वासन है कि हमारे कष्टों को हमारे लाभ के लिए समर्पित कर देगा। हमें हमारे नश्वर अनुभव और उद्धार की महान योजना संदर्भ में उनकी आंखों का सामना भी समझना भी सिखाया गया है, जो हमें जीवन का उद्देश्य बताता है, उद्धारकर्ता के आश्वासन हमें देता है जिसके नाम में मैं इन बातों की सच्चाई की गवाही देता हूं, यीशु मसीह के नाम में आमीन।
Just a few months before the death of the prophet
Joseph Smith की मृत्यु से कुछ महीने पहले बहुत कठिन समय का सामना कर रहे गिरजे के महानत्व जरूरतों के विषय में बात करने के लिए उसने उनसे कहा था, हमें मंदिर की अत्यधिक जरूरत है, अवश्य है आज इन परीक्षा के समय में हम में से प्रत्येक को और हमारी परिवारों को मंदिर की अत्यधिक जरूरत है। हाल के मंदिर समर्पण के दौरान उसके पूरे अनुभव में से मैं रोमांचित हुआ था। मुझे ओपन हाउस बहुत से दर्शकों का अभिवादन करना जो मंदिर देखने आए थे, युवाओं की गूंज और उत्तेजना के समय सांस्कृतिक समारोह, उसके बाद शानदार समर्पण सत्र अच्छे लगे थे। आत्मा मधुर थी, बहुत लोग आशीषित हुए थे। और अगली सुबह मेरी पत्नी और मैं हमारे स्वयं के कुछ पूर्वजों के लिए 32वें में भाग लेने 32वां कुंड गए थे। विधि को करने के लिए जब हमने अपनी बाहें उठाए, मैं पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा अभिभूत हुआ था। मैंने फिर से महसूस किया कि मंदिर की असली शक्ति उन विधियों में है। जैसे प्रभु ने प्रकट किया है, मेलकिसेदेक पुरोहित की पूर्णा मंदिर और उसकी विधियों में से पाई जाती है, क्योंकि वहां पर पवित्र पुरोहित की कुंजियां नियुक्त की गई है ताकि आप आदर और महिमा स्वीकार कर सकें। इसलिए वहां की विधियों में परमेश्वरत्व की शक्ति व्यक्त होती है। यह प्रतिज्ञा करके इसके परिवार के लिए है। हमारी जिम्मेदारी उसे ग्रहण करना है जो पिता देता है, क्योंकि इसे जो ग्रहण करता है उसे बहुयता से दिया जाएगा शक्ति भी। वह सब ग्रहण करने की शक्ति वह दे सकता है, देगा अब अनंत रूप से। परमेश्वर ने बेटे बेटियां बनाने की शक्ति, स्वर्ग की शक्तियों को जानना, इसके नाम में बोलना और उसके आत्मा की शक्ति प्राप्त करना, ये शक्तियां हम में से प्रत्येक को मंदिर की विधियों और अनुबंधों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध हो जाती है। नफी ने अपने महान दिव्य दर्शन में हमारे समय को देखा था। मैं नफी ने परमेश्वर के मेमने की शक्ति को देखा कि वह मेमने के गिरजे के संतों के ऊपर और प्रभु के अनुबंधित लोगों के ऊपर आई, जो कि संपूर्ण पृथ्वी पर बिखरे हुए थे, और वे धार्मिकता और परमेश्वर की शक्ति के महान अनुग्रह से लैस थे। मुझे हाल ही में अध्यक्ष रसेल एम नेल्सन और उसके परिवार के साथ मंदिर के ओपन हाउस में होने का सौभाग्य मिला था, जब उन्होंने उन्हें मुहरबंदी वेदी के चारों ओर एकत्रित किया और उन्हें समझाया कि जो कुछ भी हम गिरजे में करते हैं, प्रत्येक सभा गतिविधि पाठ और सेवा, हम में से प्रत्येक को मंदिर आने और वेदी के पास घुटने के बल झुककर पिता की प्रतिज्ञा की गई है, आशीषों को अनंत काल के लिए ग्रहण करने के लिए तैयार की है। जब हम मंदिर की आशीषों को अपने स्वयं के जीवनों में महसूस करते हैं, तो हमारे हृदय हमारे परिवारों की ओर मुड़ते हैं, जीवित और मृत दोनों। हाल ही में मैंने तीन पीढ़ी परिवार को मिलकर 32वां में उसके पूर्वजों के लिए भाग लेते हुए देखा था। यहाँ तक कि दादी ने भी भाग लिया था, यद्यपि उन्हें स्वयं पानी के अंदर जाने में कुछ घबराहट हुई थी। जब वह पानी से बाहर आई और उसके पति के गले लगी, तो उनकी खुशी के आंसू निकल गए थे। फिर दादा, पिता और बहुत से नानी पोतों ने एक दूसरे को 32वां दिया था। इससे अधिक आनंद परिवार के लिए क्या हो सकता था। प्रत्येक मंदिर में 32वां कुंड में आपको परिवार के तौर पर विशेष समय मिलता है। अपनी मृत्यु से कुछ देर पहले अध्यक्ष थॉमस एस स्मिथ ने मृतक की मुक्ति का दिव्य दर्शन प्राप्त किया था। उन्होंने सीखा था कि जो आत्मिक संसार में है, पूर्ण रूप से उन विधियों पर आश्रित है जो हम उनके स्थान पर ग्रहण करते हैं। धर्मशास्त्र में लिखा है, मृतक जो पश्चाताप करते हैं, वे परमेश्वर के घर की विधियों के आज्ञा पालन के द्वारा मुक्ति प्राप्त करेंगे। हम उसके स्थान पर विधियों को ग्रहण करते हैं, लेकिन वे प्रत्येक विधि से जुड़े अनुबंध को बनाते हैं और अपने लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं। सच में पर्दा हमारे लिए बारीक और मंदिर में उनके लिए पूरी तरह से खुला जाता है। तब इस कार्य को करने की संरक्षक और कार्यकर्ता के रूप में हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी क्या है। भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ ने 1840 में संतों को सिखाया था कि बहुत परिश्रम किया जाना चाहिए और बहुत अधिक स्रोतों की आवश्यकता होगी, और जब यह कार्य मंदिर में जल्दी किया जाता है, तब यह संतों को उसके मनों में इन बातों के महत्व को समझाने के योग्य बनाता है, और फिर वे उस कदम को उठाते हैं जो इस कार्य को करने के लिए आवश्यक है, और उनको स्वयं के लिए साहस मिलता है और सबको करने का संबंध मिलता है जो वे कर सकते हैं, और स्वयं इतनी दिलचस्पी लेते हैं मानो संपूर्ण कार्य केवल उन पर निर्भर हो। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन हैं और कहां से आए हैं? ये वे हैं जो उस बड़े क्लेश में है बिलकर आए हैं। इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने और उनके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, जो कि सिंहासन पर बैठता है और उसके बीच निवास करेगा। کیا آپ اپنے مندر کی من کی آنکھوں میں انہیں دیکھ سکتے ہیں جو مندر میں سیوا کرتے ہیں؟ سنسار میں کاریشیل 150 مندروں میں 120,000 سے ادھک ودھی کاریہ کرتا ہے، پھر بھی مدھر انوبھو کو پانے کے لیے اور بھی ادھک لوگوں کے لیے موقع ہے۔ جب ادھک گارڈن بھی ہنکلی نے سنسار بھر میں چھوٹے چھوٹے مندروں کے وچار کی گھوشنا کی تھی، انہوں نے سکھایا تھا کہ سبھی ودھی کاریہ کرتا ستھانیہ لوگ ہونے چاہیے جو اپنے وانڈر اسٹیک میں انیہ پدوں پر سیوا کرتے ہیں۔ سامانیہ کاریہ کرتا 2 سے 3 ورش کاریہ کرنے کے لیے نیوکت کیے جاتے ہیں، سمبھاونا ہوتی ہے کہ یہ ادھک آگے بڑھے۔ یہ پریوجنا نہیں کہ ایک بار ان کو نیوکت کرنے کے بعد اب تک بنے رہنے دیا جائے، اب تک یوگیہ ہے۔ بہت سی لمبی سیوا کاریہ کرتا مندر سے اپنے پریم کو جاتی رہتی ہے جب سے سیوا مکت کیے جاتے ہیں اور انیہ نئے کاریہ کرتا کو موقع دیتے ہیں۔ لگ بھگ 100 سال پہلے پریری جانی وڈوسٹن نے لکھا تھا، اس شاندار کاریہ کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ادھک کاریہ کرتاؤں کی ضرورت ہے۔ ہمیں مندر کاریہ کے لیے سبھی آیو کے ادھک پریورتت لوگ چاہیے۔ سمے آ چکا ہے اس نئے مندر کرانتی میں ابھی آیو کے لوگوں کو سکرے سیوا میں لانے کا۔ مندر کاریہ یوا اور سکرے کے لیے اتنا ہی لابھ دائک ہے جتنا وہ ورد لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے جیون کے بہت سے بوجھوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ یوک کو مندر میں اپنے پتا اس کے نانا دادا سے ادھک اپنے ستھان کی آوشکتا ہے جو کہ انوبھووں کے دوارا سنتولت ہو جاتا ہے۔ یوکتوں کو انہوں نے سب ابھی جیون میں پرویش کی آتما پریرنا اور نردیشن کی ضرورت ہے جو مندر ودھیوں میں بھاگ لینے سے آتا ہے۔ بہت سے مندروں میں مندر ادھیکش ایم ٹی سی جانے کے پہلے نئی نیوکتی اور انڈو پرچارکوں یوکوں اور یوتیوں کا کچھ سمے کے ودھی کاریہ کرتا کے روپ میں سواگت کر رہے ہیں۔ یہ یووا لوگ نہ کیول سیوا کرنے کے لیے آشرت ہوئے ہیں بلکہ یہ مندر میں سے بھی سیوا کرنے کی سندرتا اور آتما کو انت کرتے ہیں۔ میں نے بہت سے یوک اور یوتیوں جنہوں نے اپنے مشن سے پہلے اور بعد میں سیوا کی تھی، وہ ان کے انوبھوتیوں کو بانٹنے کے لیے کہا تھا۔ انہوں نے مندر میں اپنے انوبھو بتانے کے لیے ان واقعوں کا اپیوگ کیا تھا۔ جب میں نے مندر میں سیوا کی مجھے اپنے پتا اور ادھارکرتا کے نکٹ ہونا محسوس ہوا، مجھے پورن شانتی اور خوشی محسوس ہوئی، مجھے گھر میں ہونا محسوس ہوا، میں نے پویترتا شکتی اور بل پراپت کیا، مجھے اپنے پاور انوبندھوں کا مہتو محسوس ہوا۔ مندر میرا حصہ بن چکا ہے، جن کی ہم سیوا کرتے ہیں ودھیوں کے دوران نکٹ ہوتے ہیں۔ اس سے مجھے لالچ پر وچے پانے کی طاقت ملتی ہے اور مندر نے میرا جیون ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہے۔ مندر میں سیوا کرنا سبھی آیو کے لوگوں کے لیے مولیوان اور شکتیشالی انوبھو ہے، یہاں تک کہ کچھ نئے وواہت جوڑے مل کر سیوا کر رہے ہیں۔ ادھیکش نیلسن نے سکھایا تھا مندر میں سیوا پریوار کے لیے سروتم گتی ودھی ہے۔ پیس ودھی کاریہ کرتاؤں کے روپ میں اپنے پوروجوں کے لیے ودھیاں سویکار کرنے کے اتیرکت آپ اور اس کے لیے ودھیوں کی دیکھ ریکھ بھی کر سکتے ہو۔ جیسے ادھیکش وڈروف نے کہا تھا، سمپورن پرتھوی پر اس سے مہان بلاہٹ کسی پروش یا مہیلا کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اپنے ہاتھوں میں ادھار کی ودھیوں کی شکتی اور ادھیکار کو لے کر کسی کو پردان کریں، اس آتما کے ادھار کے لیے آپ پرمیشور کے ہاتھوں کے اوزار بن جاتے ہو۔ مانو انسان کو دی گئی کوئی بھی وستو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ آگے کہتے ہیں، پوتر آتما کی مدھر پریرنائیں آپ کو دی جائے گی، سورگ کے خزانے سورگ دوتوں کی سنگتی سمے سمے پر ملتی رہے گی۔ یہ آپ کے یا میرے لیے کچھ سال یہاں سیوا میں بلیدان کرنا واجب ہے۔ ادھیکش تھامس مانسن نے حال ہی میں ہمیں یاد دلایا تھا کہ مندر کے آشیشیں بہمولیہ ہیں، کوئی بھی بلیدان اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ مندر آئے، بار بار آئے، اپنے پریوار کے ساتھ اور اپنے پریوار کے لیے آئے اور دوسروں کو بھی آنے میں مدد کریں۔ یہ شویت وستر پہنے لوگ کون ہیں؟ میں نے بھائیوں اور بہنوں، یہ آپ ہیں جنہوں نے مندر کی ودھیا پراپت کی ہے، جنہوں نے بلیدان کر کے اپنے انوبندھوں کا پالن کیا ہے، جو اپنے پریواروں کی مندر سیوا کی آشیشیں پانے میں مدد کر رہے ہو، جنہوں نے ساتھ ہی میں دوسروں کی مدد کی ہے۔ آپ کی سیوا کے لیے دھنیواد۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ پرتیک مندر اس کا پویتر پاون گھر ہے اور وہ پر ہم میں سے پرتیک پرمیشوراتو کی شکتی کو سیکھتا اور جانتا ہے۔ یشو مسیح کے نام میں آمین۔
A
week ago was Easter.
एक हफ्ते पहले ईस्टर था और हमारी सोच एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान और उनके पुनरुत्थान पर केंद्रित होती है। इस बीते वर्ष में मैंने पुनरुत्थान के विषय में साधारण से अधिक सोचा और विचारा है। करीब एक वर्ष पूर्व हमारी बेटी अलीशा का देहांत हो गया। उसने कैंसर से 8 वर्ष तक संघर्ष किया, काफी शल्य चिकित्सा के साथ अलग अलग तरह के इलाज, रोमांचक चमत्कार और गहरी निराशा के साथ। जैसे वह अपने धरती के जीवन के अंत के पास आई, हमने उसकी शारीरिक अवस्था को बिगड़ते देखा। अपनी अनमोल बेटी के साथ ऐसा होते हुए देखना कष्टदायी था। वह चमकती आंखों वाली छोटी बच्ची जो बड़े होकर गुणवान अत्युत्तम स्त्री, पत्नी और माँ बनी, मैंने सोचा मेरा दिल टूट जाएगा। पिछले वर्ष ईस्टर के समय, अपनी मृत्यु से कुछ एक महीने पहले, अलीशा ने लिखा, ईस्टर एक अनुस्मारक है उन सबका जिसकी मैं अपने लिए आशा करती हूँ कि किसी दिन में चंगाई पाऊंगी और किसी दिन में पूर्ण हो जाऊंगी। किसी दिन मुझ में कोई भी धातु या प्लास्टिक ना होगा। किसी दिन मेरा मन डर से मुक्त होगा और मेरा दिमाग चिंता से मुक्त होगा। मैं ये प्रार्थना नहीं करती कि यह सब जल्द हो, परंतु मैं खुश हूँ कि मैं सच में विश्वास करती हूँ कि बाद का जीवन सुंदर है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान उन वस्तुओं को निश्चित करता है जिनकी आशा अलीशा ने की थी और हम सब में बिठाता है एक कारण के लिए आशा जो है। हम अध्यक्ष गॉर्डन बी हिंकली पुनरुत्थान की ओर निर्दिष्ट किया जैसे मनुष्य के इतिहास की सबसे बड़ी घटना। पुनरुत्थान यीशु मसीह के बलिदान द्वारा लाई गई और महान मुक्ति की योजना में बुनियादी है। हम सब स्वर्गीय माता पिता के बच्चे हैं। जब हम इस धरती के जीवन में आते हैं, हमारी आत्मा हमारे शरीर के साथ एक हो जाती है। हम वह सब खुशियों और चुनौतियों का अनुभव करते हैं जो इस नाशवान जीवन से जुड़ी है। जब तक एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उनकी आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। पुनरुत्थान एक व्यक्ति की आत्मा और शरीर का फिर से एक होना संभव करता है। केवल इस समय का शरीर अविनाशी और संपूर्ण, कोई दर्द, बीमारी या किसी तरह की परेशानी का विषय नहीं। पुनरुत्थान के बाद आत्मा कभी भी शरीर से अलग नहीं होगी, क्योंकि उद्धारकर्ता का पुनरुत्थान मृत्यु पर पूर्ण विजय लाया। नियम अनुसार अपनी अनंत जगह को पाने के लिए हमें आवश्यकता है अनश्वर आत्मा की। एक आत्मा और शरीर हमेशा के लिए एक। आत्मा और अनश्वर शरीर हमेशा साथ जुड़े रहते हैं। हम आनंद की पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। असल में पुनरुत्थान के बिना हमें आनंद की पूर्णता नहीं प्राप्त होती, परंतु हमेशा के लिए तुच्छ हो जाते हैं। विश्वासी भी, धार्मिक मनुष्य भी अपने शरीरों का अपनी आत्मा से अलग होना कैद के जैसे देखते हैं। हम कैद में से पुनरुत्थान के द्वारा रिहा हो गए हैं, जो कि मुक्ति है मृत्यु के बंधन और जंजीर से। हमारी आत्मा और हमारा शरीर दोनों की कोई मुक्ति एक दूसरे के बिना नहीं है। हम में से हर एक में शारीरिक, मानसिक और भावुक सीमाएं और कमजोरियां हैं। ये चुनौतियां जिनमें से कुछ असंभव लगती हैं, अंततः सुलझ जाएंगी। इनमें से कोई भी परेशानी हमारे साथ पुनरुत्थान के बाद ना होगी। अलीशा का जिस तरह का कैंसर था, उसने उन व्यक्तियों के जीवित रहने की दर पर खोज की और संख्या प्रोत्साहन करने वाली नहीं थी। उसने लिखा, परंतु इलाज है, इसलिए मैं नहीं डरती। यीशु ने मेरे कैंसर को ठीक कर दिया है और आपके, मैं बेहतर हो जाऊंगी। मैं खुश हूं कि मैं ये जानती हूं। हम कैंसर के शब्द को किसी शारीरिक, मानसिक और भावुक शब्द में बदल सकते हैं जिसका हमने सामना किया है, क्योंकि पुनरुत्थान से वे भी ठीक हो गए हैं। पुनरुत्थान का चमत्कार परम इलाज है। यह दवाई की शक्ति से अधिक है। हम जानते हैं यह हो सकता है क्योंकि उद्धारकर्ता पुनरुत्थारित हो चुके हैं और हमारे लिए पुनरुत्थान को हर एक के लिए लाएंगे। उद्धारकर्ता का पुनरुत्थान साबित करता है कि वह परमेश्वर का पुत्र है और उन्होंने जो सिखाया वह सच है, वह जी उठा है जैसा उसने कहा। इससे अधिक उनकी दिव्यता को बेजोड़ नहीं हो सकता कि उनका कब्र से अनश्वर शरीर के साथ आना। हम नए नियम के समय से पुनरुत्थान के गवाहों को जानते हैं। इसके साथ उन स्त्री और पुरुषों के विषय में जिनके बारे में हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं, नया नियम हमें आश्वासन देता है कि सौ ने पुनरुत्थारित प्रभु को देखा और मॉर्मन की पुस्तक बताती है कि सौ से भी अधिक। और ऐसा हुआ कि भीड़ आगे बढ़ी और उसके बगल में अपने हाथों को डाला और अपने आंखों से देखा और अपने हाथों से महसूस किया और इसकी निश्चयता को जाना। इसकी गवाही दी कि वह जिसके आने के विषय में भविष्यवक्ताओं ने लिखा था और उन प्राचीन गवाहों को अंतिम दिनों के गवाहों में संकलित किया गया। वास्तव में व्यवस्थता के प्रारंभिक दिशा में जोसेफ स्मिथ ने पुनरुत्थारित उद्धारकर्ता को पिता के साथ देखा। जीवित भविष्यवक्ता और प्रेरित ने पुनरुत्थान के सच की गवाही दी है, जीवित मसीह की, जो हम कहेंगे हम सब घिरे हैं इसके साथ एक बड़े गवाहों के बादल से, और हम में से हर एक कोई गवाहों के बादल का हिस्सा हो सकता है जो पवित्र आत्मा की शक्ति से जानते हैं कि हम जो ईस्टर पर मनाते हैं वह सच में हुआ था, पुनरुत्थान वास्तव में है। उद्धारकर्ता के पुनरुत्थान की सच्चाई हमारे टूटे हुए मन को आशा से भर देती है, क्योंकि उसके साथ आश्वासन आता है कि सुसमाचार के सारे वादे वैसे ही सच्चे हैं, वादे जो पुनरुत्थान से कम चमत्कारी नहीं हैं। हम जानते हैं कि उसके पास हमारे पापों को धोने की शक्ति है। हम जानते हैं कि उन्होंने हमारी सारी दुर्बलता, दुख और अन्याय जो हमने झेले अपने ऊपर ले लिए। हम जानते हैं कि वह मृत्यु से जी उठे अपने पंखों में स्वस्थ होकर। हम जानते हैं कि वह हमें पूरा कर सकते हैं चाहे हमारे अंदर कितना भी कुछ टूटा हो। हम जानते हैं कि वह हमारे उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। हम जानते हैं कि हम यीशु मसीह के द्वारा संपूर्ण किए जाएंगे जो इस महत्वपूर्ण बलिदान को लेकर आए हैं, यदि हम में विश्वास हो और हम उनका अनुसरण करें। ऑर्टोरियो मेसिसह हदिल ने मधु संगीत प्रेरित पौलुस के शब्दों में डाला जो पुनरुत्थान के लिए आनंद मनाता है। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें एक रहस्य, हम नहीं सोएंगे परंतु हम सब बदल जाएंगे। एक क्षण में आग की जगमहट और आखिरी तुरही पर तुरही आवाज देगी और मृत उठ जाएंगे ईमानदारी से और हम बदल जाएंगे। और इस भ्रष्टाचारी पर ईमानदारी डालना चाहिए और इस नाश्वर और अनश्वर। फिर वह लिखी हुई बातें पूरी होंगी, मृत्यु की जीत ग्रस्त करेगी। ओ मृत्यु तेरे डंक कहाँ है, ओ कब्र तेरी जीत कहाँ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें यीशु मसीह द्वारा जीत देते हैं। मैं आभारी हूँ उन आशीषों का जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान और पुनरुत्थान से है। वह सब जिन्होंने एक बच्चे को कब्र में डाला या जीवन साथी के कॉस्केट पर रोया है या दुखी हुआ है माता पिता या जिससे वह प्रेम करते हैं उनकी मृत्यु पर, पुनरुत्थान माध्यम है एक आशा का। कितना शक्तिशाली अनुभव होगा उनके एक बार फिर से देखना, केवल बस आत्मा में नहीं परंतु पुनरुत्थान शरीर में। मैं अपनी माता को फिर से देखना चाहता हूँ और उनके कोमल छुआन को महसूस करना चाहता हूँ और उनकी आंखों में देखना चाहता हूँ। मैं अपने पिता की मुस्कुराहट को देखना चाहता हूँ और उनकी हंसी को सुनना और उन पुनरुत्थान देखना चाहता हूँ। संपूर्ण मनुष्य विश्वास की आंख में मैं देखता हूँ अलीशा को पूरी तरह से धरती के दुखों से परे या मृत्यु से पुनरुत्थानित। संपूर्ण अलीशा विजयी और आनंद से भरी। कुछ ईस्टर पूर्व उसने साधारण तौर से लिखा, जीवन उसके नाम के द्वारा, इतना विश्वास हमेशा हर एक के द्वारा। मुझे ईस्टर से प्रेम है क्योंकि यह मुझे याद दिलाता है। मैं पुनरुत्थान की वास्तविकता की गवाही देता हूँ। यीशु मसीह जीवित हैं और उनके कारण हम फिर से जीवित होंगे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
Brothers and sisters, dear friends, as we come to the conclusion of this wonderful general conference,
इस सम्मेलन के समापन पर हम उन सभी का आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने इन सेवाओं की तैयारी में परिश्रम से अपना सहयोग दिया है. हम उन सब वार्ताकारों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारा संबोधन किया और मधुर संगीत उपलब्ध कराया. इस सत्र के हमारे अंतिम वार्ताकार एल्डर जेफरी और हॉर्लैंड 12 की परिषद के परितों से होंगे. उनकी टिप्पणी के पश्चात गायन मंडली इस सभा का समापन सिंग वी नाउ एट पार्टन से करेंगे. इसके पश्चात समापन प्रार्थना एल्डर शेन एम्बोन 70 के द्वारा दी जाएगी और सम्मेलन स्थगित किया जाएगा.
Brothers and sisters,
भाइयों और बहनों, आपको कुछ जानकारी है? आपको कैसा महसूस हो रहा है कि हाउ मच हम आपको प्यार करते हैं?
Fixed on one face at this pulpit sequentially.
10 घंटों के लिए आपने हमें सुना, लगातार सुना, और उन सभी 10 वर्षों के लिए, और हम सब यहीं बैठकर, पीछे बैठकर, आपको देखते रहे. आपने हमें बहुत आपने हमारा विश्वास बढ़ाया. 21,000 लोग जो यहां बैठे हैं और जो बाकी सब दुनिया में इस सभा को सुन रहे हैं, अपने घरों में, चैपल में और अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, आप वहां पर हो, यहां पर आप हो, सब पर घंटे में.
You sing and you pray wherever you are in the world.
आप जहां पर भी हैं, आप प्रे कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं और आप हम पर विश्वास करते हैं. आप चमत्कार हैं. हम आपको प्रेम करते हैं. हमारा महासम्मेलन कितना अति उत्तम रहा है. हम आशीषित हैं अध्यक्ष मॉन्शन की उपस्थिति और भविष्य सूचक संदेश द्वारा. अध्यक्ष, हम आपसे प्रेम करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं और आपका समर्थन करते हैं. हम आभारी हैं उन कितने ही पुरुषों और स्त्रियों अध्यक्षों के जिन्होंने हमें सिखाया है. हमने अतुल्य संगीत सुना है. हमारे लिए तत्काल और समर्थन के साथ प्रार्थना हुई है. सच में प्रभु की आत्मा यहाँ बहुतयात में रही है. हर तरह से कितना प्रेरणादायक यह सप्ताह रहा है. अब इस तथ्य से परे कि मैं ही केवल एक मनुष्य खड़ा हूँ आपके और आपके आश्रम के बीच, जो आप महासम्मेलन के अंत में खाने के लिए तैयार रहते हैं.
I feel the weight of that burden.
मैं एक और चुनौती देखता हूँ, जो एक तस्वीर मैंने हाल ही में देखी है.
Recently on the internet. Now my apologies to all the children.
मैं माफी चाहूंगा उन सब बच्चों से जो उन अब अपने सोफे के पीछे छुप रहे हैं, परंतु सच यह है कि हम में से कोई भी यह सप्ताह की अति उत्तम भावनाओं को कल नष्ट करना चाहेगा। हम उन सब आत्मिक प्रभावों को जो हमें हुए हैं और जो प्रेरित सीख सुनी है उसे पकड़ कर रखना चाहेंगे, परंतु यह अवश्य है कि हमारे जीवन में इन स्वर्गीय क्षणों के बाद हम जरूरत से धरती पर वापस आते हैं, ऐसे बोलने के लिए जहां कम से आदर्श परिस्थितियों हमें फिर से घेर लेती हैं। पालुस ने हमें चेतावनी देते हुए लिखा, परंतु उन पहले दिनों में स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों से बड़े झमेले से स्थिर रहे। वह दुखों की लड़ाई कई तरह से आ सकती है और वह हम सबके पास आ सकती है। निश्चित रूप से हर प्रचारक जिनमें कभी सेवा की है ने जल्द ही एहसास किया है कि जीवन कार्य क्षेत्र में वैसा नहीं रहेगा जैसा विशिष्ट प्रचालक संचालक केंद्र का वातावरण होता है। वैसे ही जैसा हम मंदिर का सुखद विश्वास आत्मिक प्रभोजन सभा को अनंत करता है। याद रखें जब मूसा सिने की पहाड़ी के अनुभव के से अकेले नीचे आया, उन्होंने पाया कि उसने उनके लोग ने अपने आप को भ्रष्ट और दूसरी और जल की कर लिया था। वे वहीं पहाड़ी से चरणों से व्यस्त होकर एक सोने के बछड़े को सजाकर उसकी महिमा कर रहे थे। उसी क्षण वह यहोवा पहाड़ी से ऊपर मूसा को बता रहे थे, तू मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर नहीं मानेगा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना। मूसा अपने इधर उधर यहूदियों से उस दिन खुश नहीं था। आपके संसारिक सेवा के दौरान यीशु पतरस जेम्स और यहुन्ना को रूपांतरण की पहाड़ी पर ले गए जहां धर्मशास्त्र कहता है उसका मुंह सूर्य की नाई चमका और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया। स्वर्ग खुल गए और भविष्यवक्ता आए और परमेश्वर पुत्र बोले। ऐसे सेलेशियल अनुभव के बाद यीशु पहाड़ी ने नीचे क्या ढूंढने आए हो? पहले उन्होंने पाया कि उनके चेले और विपक्षी बहस कर रहे थे एक युवा लड़के को विफल हुए आशीष के प्रबंध को लेकर। उन्होंने 12 को समझाने की कोशिश की, असफलतापूर्ण। ऐसा लगा कि वह उन स्थानीय साक्षकों को दे देंगे जो उन्हें मार डालेंगे। जब किसी ने उन्हें याद दिलाया कि उनकी चुंगी बाकी है, उन्होंने उसी समय उसको चुका दिया। तब उन्हें अपने कुछ भाइयों को डांटना पड़ा क्योंकि वह बहस कर रहे थे कि उसके राज्य को में कौन महंगा महान होगा। यह सब उन्हें एक ऐसी स्थिति पर ले आए जहां उन्होंने कहा है, अविश्वासी और हटीले लोग, मैं कब तुम तक तुम्हारी सहूंगा। उनके पास अपनी सेवा के दौरान अक्सर यह प्रश्न पूछने को मिला। यह आश्चर्य नहीं है कि शांति में पहाड़ों पर प्रार्थना करना चाहते हैं, एहसास होते हुए कि हमें चोटी के अनुभव से नीचे आना होता है। नियमित जीवन कार्य को करने के लिए मैं प्रोत्साहन देना चाहूंगा कि यह महासम्मेलन खत्म होता है। सबसे पहले यदि आप आने वाले दिनों में अपने चारों ओर न केवल रुकावटें देखते हैं परंतु अपने जीवन में तथ्य देखते हैं जो उन संदेशों तक नापते जो अपने इस सप्ताह में सुने हैं, आत्मा से ना निकालें और ना ही उन्हें छोड़ें। सुसमाचार, गिरजाघर और यह अद्भुत अर्धवार्षिक समारोह हमें आशा और प्रोत्साहन देने के लिए है, ना कि निराशा। केवल विपक्षी हम सबका दुश्मन हमें भरोसा दिलाने के लिए है कि महासम्मेलन के उद्देश्य आदर्श झूठे हैं, कि लोग कभी नहीं सुधरते, कि वह कभी नहीं प्रगति करेंगे, कि कोई भी कभी भी प्रगति नहीं करेगा। और शैतान यह उपदेश क्यों देता है? क्योंकि वह जानता है कि वह कभी नहीं सुधर सकता, कि वह प्रगति नहीं करेगा, कि दुनिया के अंत के बिना उसका कल कभी नहीं चमकेगा। वह एक तुच्छ मनुष्य है जो अनंत सीमाओं से बंधा है और वह चाहता है कि हम भी तुच्छ हो जाएं, कभी उसमें ना गिरें। बलिदान की भेंट के साथ और स्वर्ग की शक्ति जो हमारी मदद के लिए है, हम सुधर सकते हैं। और सुसमाचार की महान बात यह है कि हमें कोशिश करने के लिए ऋण मिलता है, चाहे हम उसमें हमेशा ना सफल हो। जब पहले के गिरजाघर में वाद विवाद हुआ कि स्वर्ग की आशीष का हकदार कौन है और कौन नहीं, प्रभु ने भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ को घोषित किया कि मैं तुमसे कहता हूँ, परमेश्वर की भेंट उसके लाभ के लिए भी दी गई है जो मुझसे प्रेम करते हैं और जो मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, और उनके लिए जो उसे ढूंढते हैं। भाई, क्या हुक्म सब धन्यवाद नहीं देंगे एक संकलित प्रबंध के लिए और ढूंढने के लिए? यह एक राक्षस है, क्योंकि कभी कभी यही हमारे पास है देने के लिए। हम कुछ संतुष्ट लेते हैं इस सच में कि यदि परमेश्वर केवल उत्तम विश्वासियों को ही प्रतिफल देगा, उसके पास अधिक बांटने की सूची ना होती। इसलिए कृपया कल को याद रखें और उसके बाद के हर दिन को। प्रभु उन्हें आशीष देता है जो सुधरना चाहते हैं, जो आज्ञाओं की आवश्यकताओं को स्वीकार करते हैं, उन्हें रखते हैं जो मसीह के जैसे गुणों को सोचते हैं और उन्हें प्राप्त करते हैं। यदि आप उस लक्ष्य में लड़खड़ा गए जो सबसे होता है उद्धारकर्ता है आपको जाते जाने में मदद करने के लिए, यदि आप गिर जाते हैं उसकी शक्ति पाने के लिए पुकारें, फिर क्षमा मांगे, ठीक करें जो करना है और आगे बढ़ें, जल्द ही आपको भी सफलता मिलेगी और आप बढ़ेंगे। जैसे कि आप मुझ में इच्छा रखते हैं वैसे ही आप में होगा, प्रभु ने घोषित किया।
And repair and fix whatever you have to fix and keep going. Soon enough.
जैसे कि आप मुझ में इच्छा रखते हैं वैसे ही आप में होगा, प्रभु ने घोषित किया है। आप विश्वास आत्मा में डालें जो आपका नेतृत्व करता है अच्छे के लिए, सही करने के लिए, ईमानदारी से चलने के लिए, सही न्याय करने के लिए। फिर अच्छाई में आप इच्छा रखेंगे, आपको प्राप्त होगा। मुझे इस सिद्धांत से प्रेम है। वह फिर से कहता है कि हम आशीषित होंगे अपनी इच्छा अच्छा करने के लिए, जैसे कि हम मेहनत करते हैं बनने के लिए। और यह हमें याद दिलाता है उन आशीषों के योग्य होने के लिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि हम उन्हें दूसरों के लिए ना करें। हमें उचित न्याय करना है, कभी गलत तरीके से नहीं। हमें विनम्रता चलना है, कभी घमंड नहीं। हमें न्याय ईमानदारी से करना है, कभी पाखंड से नहीं। भाइयों और बहनों, पहला सबसे बड़ी आज्ञा अनंत की है, परमेश्वर से अपने पूरे मन, तन, दिमाग और शक्ति से प्रेम करना। परंतु उससे भी पहले सबसे बड़ा अनंत का सच यह है, परमेश्वर हमें पूरे मन, तन, दिमाग और शक्ति से प्रेम करता है। वह प्रेम अनंत की नींव का पत्थर है।
That love is the foundation stone of eternity, and it should be the foundation.
और यह हमारे दैनिक जीवन के नींव का पत्थर होना चाहिए। वास्तव में यही वह केवल आश्वासन है जो हमारी आत्माओं में उत्तेजित है, जिसके साथ हमें विश्वास रखने का आत्मविश्वास होता है। कोशिश करना सुधारने की, अपने पापों के लिए हमेशा समा मांगना और हमेशा अपने पड़ोसी की वह अवधि देना। अध्यक्ष जॉर्ज क्यू कैनन ने सिखाया, चाहे परीक्षण करना भी गंभीर क्यों ना हो, कष्ट कितने भी गहरे हो, आपदा कितनी भी बड़ी हो, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कभी नहीं और ना कभी, वह ऐसा नहीं कर सकते। यह उनका व्यक्तित्व नहीं है, वह हमेशा हमारे साथ खड़े हैं। हम तेज भट्टी से गुजरे या गहरे पानी से, परंतु हम कभी भी उपभुक्त या अभिभूत नहीं होंगे। हम इन सब आपदा और दुखों से अच्छे और शुद्ध उनके लिए निकलेंगे। हमारे जीवन में निरंतर स्वर्ग से इस प्रभावशाली अनुराग के साथ यीशु मसीह के बलिदान, मृत्यु और शुद्ध और पूर्ण रूप से इस जीवन में हम दोनों पाप और पागलपन के परिणाम से निकल सकते हैं। अपने या दूसरों के जिस भी तरह से वे हमारे जीवन शैली में आते हों, यदि हम अपना मन परमेश्वर को देते हैं और सब कुछ सुसमाचार में रहने के लिए करते हैं, तो कल और हर एक दिन बहुत ही बेहतर होगा, चाहे हम उसे हमेशा ना पहचाने। क्योंकि हमारे स्वर्ग के पिता ऐसा चाहते हैं, वह हमें आशीष देना चाहते हैं, वह हमें विजय भाव से खुश देखना चाहते हैं, एक प्रतिफल परिपूर्ण और अनंत जीवन ही उद्देश्य है। उनकी अनुग्राही योजना अपने बच्चों के लिए यह योजना है, एक सच पर निर्दिष्ट की हर चीज इकट्ठा अच काम करती है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। कोशिश करें, विश्वास करें, विचार करें, बढ़ते रहें। आजकल हमेशा के लिए स्वर्ग पर आनंदित होगा। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम्हें नहीं सुनना, यहाँ ने कहा, परमेश्वर थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत समर्थ देता है, परंतु यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाबों की नई उड़ेगा, वे दौड़ेगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। भाइयों और बहनों, प्रिय स्वर्गीय पिता हमें कल आशीष दे या याद रखें के लिए कि हमें आज कैसा लगा है। वह हमें आशीष दे प्रतिष्ठा और धैर्य से प्रयास करने के लिए और दृढ़ता से उन आदर्शों की और जो हमने इस सप्ताह के सम्मेलन में सुना है, जानते हुए उनका दिव्य प्रेम और अमोद मद हमारे साथ होगा और हमारा जब हम संघर्ष करेंगे कोई हमारे साथ ना होगा, विशेषकर जब हम संघर्ष करेंगे।
If gospel standards seem high and the personal improvement,
यदि उच्चतर और निजी सुधार वाले दिनों में पहुंच के बाहर लगता है, याद रखें यीशु को, जिन्हें अपने लोगों को प्रोत्साहन दिया जब वह चुनौतीपूर्ण भविष्य का सामना करते हैं, अपने आप को पवित्र करो, उसने कहा क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्यक्रम करेगा, मैं भी उससे वादा करता हूँ। यह इस गिरजाघर का वादा है, यह उसका वादा है जिसने बहुत सारे चमत्कार किए हैं, जो खुदा है, और इनकी ही नाम पे मैं अपने अपना
अपना In the name of Jesus Christ. Amen.
खत्म हट गया वो.
Our Father in heaven, we love thee.
हमारे ईश्वर के पिता, हम आपको हमसे प्रीत करते हैं, हम यीशु मसीह से प्रीत करते हैं, हम आपके सुख परिवार की योजना के लिए धन्यवाद देते हैं, और जो हमें आज निर्देशन प्राप्त हुए हैं ताकि हम उनको उन्नति कर सके हैं, और हम प्रार्थना करते हैं ताकि उन कामों में कर सकें जो हमें आज्ञा दी गई है, और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की ताकि हम सही का चुनाव कर सकें, और चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हम उस यात्रा का चुनाव करें और आपके निर्देशों द्वारा शानदार प्रेस थॉमस एस मॉन्सन के द्वारा यीशु मसीह के नाम में आमीन।
This has been a broadcast of the one.
ये अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजे का 186वां वार्षिक महासम्मेलन था। इसके वक्ता गिरजे के जनरल अधिकारियों और पदाधिकारियों में से चुने गए थे। इस सत्र का संगीत मॉर्मन मंडप गायक मंडली द्वारा उपलब्ध कराया गया था। इसका प्रसारण बॉनेवुड डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा सार्वजनिक सेवा के रूप में किया गया। बिना लिखित अनुमति के इस कार्यक्रम की नकल, रिकॉर्डिंग, प्रतिलेखन या अन्य उपयोग वर्जित है।